पृष्ठ संख्या 48, ताल के 10 प्राण पर टिप्पणी। काल, पहला, क्षण से लेकर काकपद तक विविध परिमाण संगीत रत्नाकर एवं अन्य कुछ ग्रंथों में बताए गए हैं, किंतु भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में काल मापन के लिए इतने सूक्ष्म परिमाणों का उल्लेख नहीं किया गया है। उनकी राय में लघु काल यानी एक मात्रा यानी क च ट त प इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में लगने वाला काल है। दूसरा, अलग अलग प्रदेशों में लघु काल का आकार लंबाई 1 निमेश से लेकर 5 निमेशों तक माना गया है। मार्गी ताल में 5 निमेशों का एक लघु तो तमिल ग्रंथों के देशी तालों के लिए 4 निमेशों का एक लघु ऐसा प्रमाण बताया गया है। तीसरा, काल नापने का यह कोष्ठक बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है तथा इनमें से कुछ परिमाण ही तालों के अंग के रूप में स्वीकार किए गए हैं। ताल की अपेक्षा संगीत का काल आकार में पर्याप्त बड़ा है। संगीत के प्रस्तुतिकरण के इस काल को ताल के परिमाणों में नापा जाता है, इसीलिए काल नामक प्राण को केवल ताल का प्राण न कहकर संगीत का प्राण कहना अधिक उचित होगा। दूसरा है अंग। काल नामक प्राण का विचार करते समय हमने यह कहा है कि काल के विविध परिमाणों में से चुने हुए परिमाणों को तालों का अंग माना जाता है, इसीलिए यहाँ 10 प्राणों का क्रम बदलकर काल के बाद अंग नामक प्राण विवेचन के लिए लिया गया है। दूसरा, ताल के आवर्तन के दौरान द्रुत और लघु अक्षरों के प्रयोग के बाद सुख भाव के लिए अत्यल्प विराम लेकर वह आवर्तन समाप्त किया जाता था। इस विश्रांति काल को विराम कहकर संबोधित किया जाता है। विराम अगर द्रुत अक्षर के बाद आ जाए तो वह 1/4 मात्रा काल का होगा, और अगर लघु अक्षर के बाद आ जाए तो 1/2 मात्रा काल का होगा। कुछ शास्त्रकारों की राय में वह मात्रा काल 1/4 मात्रा का ही होना चाहिए। यह विराम काल द्रुत एवं लघु अक्षरों के साथ ही आ सकता है। गुरु, प्लुत एवं काकपद अक्षर काल को विराम काल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। विराम काल की संकल्पना का निश्चित उपयोग ताल के गठन में किए जाने से उस ताल के एक आवर्तन का मात्रा काल विराम काल के कारण 1/4 मात्रा से बढ़ रहा हो, और इस कारण ताल का स्वरूप अपूर्णांक मात्राओं में बनता हो, किंतु निश्चित रूप से यह ताल कैसे प्रस्तुत होगा इसके विषय में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सका। उस जमाने में ताल का उपयोग मुख्यतः साथ संगत के लिए होने के कारण लगता है। पृष्ठ संख्या 49 की विराम कालयुक्त गायन भी अपूर्णांक की तालाकार में किया जाता होगा, और उस जमाने में ऐसा होता होगा तो उस संगीत को समर्थता के साथ प्रस्तुत करने के लिए गायक एवं वादक कलाकार को ताल लय पर प्रभुत्व पाने की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती होगी। तीसरा, काल के विविध परिमाणों को पहचानने के लिए कोई भी प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं दिया गया है, किंतु ताल के जो विविध अंग बताए गए हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए विविध चिन्ह निश्चित किए गए हैं। साथ ही हाथ से ताल पकड़ते समय भी प्रत्यक्ष संगीत के प्रस्तुतिकरण में इन चिन्हों को उपयोग में लाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। केवल हाथ से ही जहाँ ताल पकड़ना है वहाँ चिन्ह कोई अर्थ ही नहीं रखते और उनका कोई उपयोग भी नहीं है। इस पार्श्वभूमि पर वाद्य पर ताल व्यक्त करते समय चिन्हों का कोई अधिक अर्थ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। काल को अगर हम कागज पर लिख रहे हों तभी तालांग व्यक्त करने के लिए तथा तालांग समझने के लिए हम चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि ताल के प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण में ताल के विविध अंग सशब्द और निःशब्द क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और इससे ताल साकार होता है। इसके विपरीत ताल लिखते समय और लिखने के माध्यम से सिखाते समय ताल के स्वरूप को सही रूप में समझाने के लिए चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिन्ह ही आज की काल लेखन पद्धति की गंगोत्री है, ऐसा कहना उचित होगा। अक्षर वृत्त के लघु, गुरु, प्लुत इत्यादि काल परिमाणों की सहायता से ताल निर्माण हुए होंगे। अक्षरोच्चारण के जो नियम निर्धारित किए गए वह छंद शास्त्र है। इन उच्चारण नियमों के अनुसार ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के लिए अलग अलग छंद बनाए गए। इन मंत्रों की शुद्धता शास्त्र शुद्ध उच्चारण पद्धति के कारण यानी उनके छंदोबद्ध पठन के कारण ही हजारों वर्षों तक टिकी रही है। इन छंद नियमों के विकास के दौरान गीत वाद्य और नृत्य की बंदिशों रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए लघु, गुरु, प्लुत इत्यादि अंगों से बांधे गए विविध ताल निर्माण हुए। मार्ग प्राचीन काल में प्रस्तुत किए जाने वाले संगीत की तुलना में आज का शास्त्रीय संगीत साधारणतया प्रथम विलंबित लय में, फिर मध्य लय में और अंत में द्रुत लय में प्रस्तुत हुआ करता है। वर्तमान प्रस्तुतीकरण का ठीक अध्ययन किया जाए तो दिखाई देगा कि विलंबित से द्रुत की ओर जो लय बढ़ती जाती है उन विविध लयों का एक दूसरे से गुणितों के रूप में कोई संबंध नहीं होता। आज के संगीत की लय धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। पृष्ठ संख्या 50 अर्थात एक संपूर्णतया अलग ही प्रकार से इन विविध लयों का प्रस्तुतीकरण सोलो तबले से हुआ करता है। कायदा रेला जैसी रचना पहले धीमी लय में प्रस्तुत की जाती है किंतु वह रचना बाद में दुगुन और चौगुन में प्रस्तुत की जाती है। अर्थात सरसरी तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसी रचना पहले दक्षिण मार्ग से प्रस्तुत की जाती है यानी प्राचीन संगीत का प्रस्तुतीकरण और तबले का प्रस्तुतीकरण आईने की प्रतिमाओं की तरह होता है। इतने सब विवेचन के उपरांत भी कुछ प्रश्न अभी तक ठीक तरह से सुलझ नहीं गए हैं। वे प्रश्न इस तरह हैं। पहला, कहा जाता है कि चित्रा मार्ग, वार्तिक मार्ग एवं दक्षिण मार्ग से व्यक्त किया गया ताल विविध मात्रा कालों की कलाओं से सजा हुआ होने के कारण उसे द्रुत, मध्य और विलंबित लय में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, उसी प्रकार जब एकक एकक कल, द्विकल, चतुष्कल और अष्टकल इस रीति से गुरु की संख्या बढ़ाई जाती है तब ताल का आकार बड़ा होता जाता है। फिर मार्ग और कलाओं के कारण ताल का आकार जो बड़ा हो जाता है उनका परस्पर संबंध क्या है, उनके अलग अलग वैशिष्ट्य कौन से हैं, यह जानना जरूरी है किंतु उनका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तीसरा, गायन का प्रस्तुतीकरण जब चित्रा, वार्तिक एवं दक्षिण मार्गों से होता है तब लय धीमी धीमी होती जाने के कारण अंग के अंतर्गत मात्राओं को अचूकता के साथ गिनने के लिए धुआ सर्पिणी 8 हस्त क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन क्रियाओं का क्रिया नामक प्राण के अंतर्गत बताई गई सशब्द निःशब्द क्रियाओं के साथ परस्पर संबंध नहीं है, उनकी अलग अलग योजना किस लिए है। भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सुभद्रा चौधरी के द्वारा किए गए अनुसंधानात्मक अध्ययन के जरिए मार्ग और कला का संबंध दिखाया गया है। वे कहती हैं, तीनों मार्गों और एकक कलादि तीनों रूपों का घनिष्ठ संबंध है। चित्रा मार्ग का एकक कल से, वार्तिक का द्विकल से तथा दक्षिण का चतुष्कल से, ताल का एकक कल रूप यानि चित्रा मार्ग, द्विकल रूप यानि वार्तिक मार्ग और चतुष्कल रूप यानि दक्षिण मार्ग। किंतु मार्ग की संकल्पना से ताल की लय व्यक्त होती है, तो एकक कलादि विविध कलाओं के द्वारा ताल के पद भाग की लंबाई प्रकट होती है। पृष्ठ संख्या 51। ताल की द्विकल अवस्था में प्रत्येक पद भाग में 2 कलाएं एवं चतुष्कल अवस्था में प्रत्येक पद भाग में 4 कलाएं होती हैं। इस प्रकार ताल की विविध लयें और उन पर आधारित ताल का आकार व्यक्त करने के लिए मार्ग की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है और ताल की क्रियाएं और उनकी संख्या स्पष्ट करने के लिए एकक कल इत्यादि कलाओं का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में कला और मार्ग की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। पहला, द्विकलादि क्रियाओं का नाप गुरुकाल होता है। दूसरा, द्विकलादि में क्रियाओं की संख्या दुगुनी होती है और मार्ग में अंग का आकार या लंबाई दुगुनी होती है। तीसरा, द्विकलादि में लय वही रहती है किंतु मार्ग में लय दोगुना बढ़ती है या कम होती है। इसका मतलब यह है कि द्विकलादि में क्रियाओं की संख्या दुगुनी किंतु लय वही होती है, जबकि मार्ग में क्रियाओं अंगों की संख्या नहीं बदलती किंतु लय दुगुनी हो जाती है। एकक कल एवं चित्र मार्ग, द्विकल तथा वार्तिक मार्ग तथा चतुष्कल और दक्षिण मार्ग में तालों की लंबाई समान होती है। ग्रह, वर्तमान गायन वादन प्रकार में ताल और लय पर प्रभुत्व रखने वाले कलाकार अतीत और अनागत की संकल्पनाओं का कलात्मकता के साथ उपयोग करते हैं। योजनाबद्ध रीति से एकाध बंदिश, तान या बोलतान, समा, अतीत या अनागत अथवा विषम ग्रहों से शुरू की जाती है। यह गायन प्रकार लोकप्रिय है ही, किंतु तान, बोल, तान और रचना का मुखड़ा, इन सबको समाप्त करने की क्रिया समा ग्रह पर, अतीत ग्रह पर अथवा अनागत ग्रह पर करने का कर्तव्य अधिक लोकप्रिय है तथा वह श्रोताओं के मन में अंकित हो जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से विषम ग्रह की क्रिया व्यवहार में अधिक प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए, गीत के बंदिशों का मुखड़ा काल से, 12वीं मात्रा से अथवा अन्य किसी भी मात्रा से शुरू होता है और इस प्रकार सम के बाद दूसरी मात्रा से या सम के पूर्व 2 मात्राएं पहले शुरू होने वाली बंदिश का स्वरूप ही विषम ग्रह व्यवस्था के अर्थ में रसिकों का ध्यान खास तौर पर आकर्षित नहीं करता। यहाँ एक बात को निर्दिष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान संगीत अत्यंत प्रगट हुआ है तथा उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत में अतीत और अनागत संकल्पनाओं का प्रयोग नियोजित मात्र के अति सूक्ष्म स्थान पर पहुंचने के लिए होता है। पृष्ठ संख्या 52। कुछ प्राचीन संगीत वांग्मय में कहा गया है कि मध्य लय में समपाणि व्यवस्था से गाया जाता है। जो द्रुत में अवपाणी व्यवस्था का उपयोग किया जाता है तो विलंबित लय में ऊपरी पाणी व्यवस्था का अवलंब किया जाता है। लय, लय के कुछ विशेष गुणधर्म निम्नानुसार हैं। पहला, लय समस्त विश्व में विविध रूपों में कार्यरत हुआ करती है। मानवीय हृदय के स्पंदन, उसका चलन, दौड़ना, पृथ्वी की घूमने की गति, बरसात की बूंदें, लयबद्ध आवाजें, यंत्रों से सुनाई देने वाली आवाजें आदि लय के अनेक रूप पाए जाते हैं। दूसरा, लय का उपयोग हम संगीत में करते हैं और संगीत की इस लय के विषय में ही अब हम विचार कर रहे हैं। संगीत के बाहर की दुनिया में पाई जाने वाली लय निर्गुण और निर्विकार होती है, परंतु संगीत की लय सगुण, साकार और सविकार प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि उस लय पर स्वर, अक्षर और शब्द आरूढ़ हुआ करते हैं और ऐसा होने से वह निर्विकार लय अकस्मात चैतन्य रूप हो जाती है। इसीलिए संगीत की लय में चैतन्य एनर्जी है, ऐसा कहा जाता है। तीसरा, आलापी का प्रस्तुतिकरण लय विहीन होता है। परिणाम कारकता का लक्ष्य सामने रखकर विविध स्वरों के कलात्मक लगाव से राग प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रस्तुतिकरण में विविध स्वराकृतियां लय की अनुपस्थिति में एक प्रकार की शिथिलता के साथ प्रस्तुत हुआ करती हैं। परंतु यही प्रस्तुतिकरण जब लय के माध्यम से अथवा लय पर आधारभूत रूप में होता है तब वह अपने आप आकारबद्ध, रचनाबद्ध अथवा संगठित रूप में पेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लय संघटक है। चौथा, हमने शुरू में ही देखा कि लय विश्व में सर्वत्र अनुभूत होती है। विविध देशों के संगीत में जो लय होती है उसका स्वरूप एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि लय वैश्विक यूनिवर्सल है। पांचवा, विविध लयों के माध्यम से संगीत की अलग अलग प्रस्तुतियां हुआ करती हैं, किंतु उन अलग प्रस्तुतियों की विविधता एवं उससे निर्माण होने वाली परिणाम कारकता की कुछ मर्यादाएं रहती होंगी। इसीलिए लय संकल्पना की सहायता से काव्य के अक्षरों की सुबद्ध रचना से और नियमित पुनरावृत्ति से छंदों का निर्माण हुआ और आगे चलकर छंद वृत्तों से मात्रा वृत्तों एवं ताल संकल्पना की निर्मिति हुई होगी। अर्थात ताल में लय होती है किंतु लय यानी छंद नहीं है और ताल भी नहीं है। लयकारी, पृष्ठ संख्या 53। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि लय के विविध रूप प्रस्तुत करना यानी लयकारी है। लयकारी की कुछ व्याख्याएं इस प्रकार हैं। पहला, संगीत में लय की विभिन्न प्रकार की क्रिया करने को लयकारी कहते हैं। गिरीशचंद्र श्रीवास्तव। दूसरा, विशिष्ट लय को कायम रखकर वादन करते समय विविध मात्राओं में न्यूनाधिक अक्षरों की योजना करके वादन हो तो उसमें एक आकर्षक वजन और चलन निर्माण होता है। यह चलन ही लयकारी है। वसंत लेले। उपर्युक्त दोनों व्याख्याएं लयकारी के विषय में निश्चित जानकारी देती हैं, फिर भी लयकारी के संदर्भ में घटित होने वाली सभी क्रियाओं एवं अंगों का अध्ययन करने से मुझे लगता है कि लयकारी की निम्नांकित व्याख्या अधिक शास्त्रीय एवं अर्थवाहक है। एक, निर्धारित लय के संदर्भ में कम या ज्यादा विश्रांति काल वाली लय की निर्मिति करके उक्त नई लय का निर्धारित मूल्य लय से एक प्रमाण प्रस्थापित किया जाता है, तब लयकारी निर्माण होती है। लय नैसर्गिक या स्वनिर्मित हो सकती है। संक्षेप में, लयकारी की निर्मिति लय में होती है। लय स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आ सकती है, किंतु लयकारी का अस्तित्व मूल लय के संदर्भ में ही पैदा हुआ होता है। प्रस्तार। प्रस्तार क्रिया में एक बड़े आकार के अंग के विविध छोटे विभाग सूत्रबद्धता से किए जाते हैं। उन सभी छोटे आकारों को जोड़ने से पूर्ववत बड़ा आकार हो जाता है, अर्थात ये प्रस्तार एक मूल आकार के विविध रूप ही होते हैं। जिस प्रकार विस्तारक्षम रचनाओं के विविध पलटे यानी मूल रचना के विशिष्ट सूत्रों एवं अनुशासन से किए गए विविध रूप ही होते हैं, उसी प्रकार प्रस्तार क्रिया में भी एक अंग के कुछ नियमों के अनुसार विविध प्रस्तार किए जाते हैं। बहुधा पखावज पर परन रेले के विस्तार की कल्पना प्रथमतः प्रस्तार संकल्पना के जरिए सूझ गई होगी। आगे चलकर उसी कल्पना को कायदा, रेला और पेशकार की संकल्पना में तबला वादकों ने अपनाया होगा और उसे अलग तत्वों से विकसित किया होगा।